તારીખ 8-9-1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 569 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 505
પત્ર 569 ચલતા હૈ
569
5 6 9 અપને પરિણમન કો દર્શાતે હુએ लिखते हैं कि व्यवसाय रूपी उपाधि कार्य है, वो व्यवसाय के परिणामों से छूटने का हम बहुत आतुर हैं, फिर भी छूटे बिना जो वर्तमान समय जा रहा है ये हमारी अवश्य शिथिलता है, ऐसा लगता है हमको। ऐसा लिख करके आगे कुछ पौराणिक महापुरुषों का प्रसंग के विषय में, जीवन के विषय में लिखते हैं कि जनक आदि उपाधि में रहते हुए भी आत्म स्वभाव में रहते थे, ऐसे आलंबन के प्रति कभी भी बुद्धि नहीं जाती। यह वचनामृत मुमुक्षु जीव के लिए बहुत उपयोगी वस्तु है। ज्ञानी भी दूसरे ज्ञानी की इस प्रकार की दशा का आलंबन नहीं लेते कि समर्थ ज्ञानी होते हैं, उपाधि कार्य करते हुए भी आत्म स्वभाव में रहते हैं, आत्म स्वभाव से चलित नहीं होते हैं। वो बात जान करके उसका आलंबन ज्ञानी नहीं लेते, खुद भी आत्म स्वभाव में तो रहते थे, फिर भी दूसरे समर्थ ज्ञानी का जीवन का इस प्रकार का आलंबन नहीं लेते थे। मुमुक्षु जीव के लिए अगर ऐसा आलंबन लेने में आए तो अवश्य स्वच्छंद का पोषण हो जाए कि देखो ज्ञानी तो आत्म स्वभाव में रहते हैं और राजकाज व्यवसाय उपाधि करते हैं, हम भी व्यवसाय करते करते आत्मकल्याण कर लेंगे। ऐसा आलंबन जब ज्ञानी नहीं लेते तो मुमुक्षु को तो भूल से भी लेना चाहिए, नहीं अगर लेगा तो बड़ी भूल हो जाएगी, और ये भूल करीब करीब मुमुक्षु कर लेते हैं। क्योंकि अपना उदय है, उदय से तो प्रतिबंध छूटता नहीं, और फिर ज्ञानी का आश्रय आधार ले लेते हैं कि देखो ज्ञानी थे फिर भी गृहस्थ आश्रम चलाया कि नहीं चलाया, व्यवसाय चलाया कि नहीं चलाया, तो हमको भी करते करते आत्मकल्याण कर लेंगे। ऐसी बुद्धि माने ऐसा अभिप्राय है वो गलत अभिप्राय है, क्योंकि उसमें आलंबन आ जाता है कि उपाधि कार्य में रहते हुए भी हम अपना कल्याण कर लेंगे, ये अभिप्राय की भूल हो जाएगी। परिणमन हो जाए एक बात है, अभिप्राय सहित परिणमन हो जाए बिल्कुल दूसरी बात हो जाती है, क्योंकि अभिप्राय का संबंध श्रद्धा के साथ जुड़ता है। अभिप्राय का कनेक्शन क्या लगता है, श्रद्धा से लगता है। चारित्र का दोष है उसका संबंध श्रद्धा के साथ उतना नहीं है, लेकिन अभिप्राय सहित चारित्र का दोष है तो उसका संबंध श्रद्धा के साथ हो जाता है, तो श्रद्धा की भी भूल उसमें खड़ी होती है और ज्ञान का विपर्यास भी, दोनों बात उसमें हो जाती है। इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण रहती है।
वैराग्य ज्ञानी की ज्ञानी की तुलना में बढ़ जाना चाहिए,
बढ़ जाना चाहिए।
क्या कहना चाहते?
तो मुमुक्षु को बहुत वैराग्य होना चाहिए, उसमें वो कहना कहने की अपेक्षा है कि ज्ञानी को कुछ कम वैराग्य होगा तो भी उसके पास तो आत्म परिणति का आत्मबल है। तो जिसको पास उनके पास तो पूंजी है, वितरागता मोक्ष मार्ग की पूंजी है उनके पास, तो उनको थोड़ा खर्च होगा तो उनके दशा में हानि नहीं होगी। लेकिन जिसके पास पूंजी नहीं वो खर्च ज्यादा करेगा, उसका तो कर्जवान हो जाएगा, उसका तो दिवाला निकल जाएगा। ये कहने का अभिप्राय है। इसलिए मोक्ष को तो अधिक सावधान रहना चाहिए। ना वो पूरी भूल है, अभिप्राय की भूल वो अधूरी भूल नहीं है। वो दृष्टि प्रकाश में लिया ना सुगानी जी ने, ऐसे कोई दोष हो जाए तो वो उतनी भूल नहीं है, लेकिन दोष अभिप्राय पूर्वक हो जाए तो ये पूरी भूल है, क्योंकि उसमें श्रद्धा का भी दोष उसमें उत्पन्न हो जाता है। इसलिए तो चारित्र दोष के साथ श्रद्धा का कनेक्शन कहाँ है? कि जहां कषाय विषय कषाय के परिणाम अपनी भूमिका के रस की मर्यादा बाहर चला जाए तो, वरना नहीं। अपनी जो भूमिका है उसमें मर्यादित रस आना चाहिए। चतुर्थ गुण स्थान में चतुर्थ गुण स्थान के लायक, मुमुक्षु में मुमुक्षु के लायक, पंचम गुण स्थान में इस गुण स्थान के लायक, छठे गुण स्थान में छठे गुण स्थान के लायक। इससे ज्यादा रस पड़ जाए तो फिर वो भूमिका छूट जाएगी। है अपनी भूमिका के अनुसार तो एकदम चारित्र के परिणाम निरस हुए वही अच्छा है, उसमें रस आए वो अच्छा है ही नहीं, ऐसा ही लेना आपने को। पूर्ण शुद्धि का ध्येय और पूर्ण शुद्धि का लक्ष्य है उनको तीव्र रस से चारित्र मोह के परिणाम आने चाहिए, नहीं ऐसे ही लेना। और महापुरुषों के चरित्र का अवलंबन लेना हो तो कैसा लेना है? पुराण में तो दूसरी भी बात आती है, कैसे? कि श्री जिनेन्द्र जैसे जन्म त्यागी भी ऋषभदेव महावीर भगवान, ऋषभदेव भगवान 16 से 24 तीर्थंकर ले लो, श्री जिनेन्द्र जैसे जन्म त्यागी वो तो कैसे थे?
जन्म त्यागी
बोले जाते हैं, मैंने जन्म से त्यागी जैसे थे, भले ही त्यागी नहीं होते थे फिर भी त्यागी जैसे थे, ऐसे भी छोड़कर चल निकले, वो भी ये गृहस्थाश्रम राजपाट छोड़ के निकले, वो तो सब राजा थे, वो तो चक्रवर्ती, तीन तो चक्रवर्ती थे, वो भी सब छोड़ के चल निकले ऐसे भाई के हेतु रूप उपाधि योग, जो भी उपाधि योग है वो भाई के हेतु रूप है। भाई के हेतु रूप क्या? कि अगर उपाधि में ज्यादा रस ले लिया तो परिणाम बिल्कुल गिर जाएंगे, इसलिए वो फिसलने की जगह है, तो वहां सावधानी से चलना चाहिए। ज्ञानी बहुत जागृत होते हैं, अपने उदय में ज्ञानी बहुत जागृत होते हैं, ऐसे भय के हेतु रूप उपाधि योग की निवृत्ति यह पामर जीव करते करते, यह पामर जीव ने अपने लिए लिखते हैं कि यह पामर जीव उपाधि योग की निवृत्ति करते करते काल व्यतीत करेगा तो अश्रेय होगा। काल व्यतीत होना चाहिए नहीं, अभिप्राय वो है, फिर व्यतीत होता है वो अलग बात है, लेकिन अभिप्राय में तो ऐसा है कि काल हमारा व्यतीत होना चाहिए नहीं। तो मुमुक्षु को वो बात कैसे लेना? बहुत अच्छा मुद्दा आया है कि हम मुमुक्षुता में अगर काल व्यतीत करते हैं और मोक्ष मार्ग में चतुर्थ स्थान में आरूढ़ नहीं होते हैं तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि अगर हम मुमुक्षुता में से आगे बढ़कर मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं किया तो अश्रेय होगा, अकल्याण हो जाएगा। अश्रेय श्रेय मैंने कल्याण, अश्रेय मैंने अकल्याण हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आई है। ज्ञानी जब ऐसा सोचते हैं कि एक ही गुण स्थान में अगर हम रहे और आगे के गुण स्थान में नहीं चढ़े हमारा काल व्यतीत होता है तो हमारे लिए वो भय का हेतु रूप है। हमको आगे बढ़ना ही चाहिए, निष्प्रमाद हमारे परिणमन होने चाहिए आगे बढ़ने के लिए, शिथिलता नहीं चले। जब ज्ञानी ऐसा सोचते हैं तो मुमुक्षु को शिथिलता का अभिप्राय तो आगे बढ़ने ही नहीं देगा। उनको ऐसा ही भाव आना चाहिए कि मुमुक्षुता में हमारा काल ज्यादा व्यतीत होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा परिणाम गिर जाएगा, इसलिए हमें आगे बढ़ करके मोक्ष मार्ग में प्रवेश शीघ्र ही कर लेना चाहिए, तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा अभिप्राय से पुरुषार्थ को तेज करना, सतेज करना, यहां से वो सबक मिलता है। लिखते हैं अपने लिए, लेकिन मुमुक्षु को अपने लिए सोचना है इस बात को कि अरे ऐसे समर्थ ज्ञानी भी जब इस तरह से सोचते हैं कि हम उपाधि योग में रह जाएंगे, ये हमारी पामरता है और हमारा काल व्यतीत होगा तो हमारा भी अकल्याण होने का भय है वहां, तो हम तो मुमुक्षु बहुत सामान्य परिस्थिति में है, हमको तो त्वरा से आगे बढ़ना चाहिए ही चाहिए। ऐसा भय जीव के उपयोग में रहता है, हमारे जीव को भी ऐसा उपयोग, ऐसा सावधानी रहता है, भय से हम भी सावधान है, हम भी डेंजर पॉइंट को बराबर समझते हैं और बहुत उपयोग से चलते हैं, क्योंकि यही कर्तव्य है, हर भूमिका में यही कर्तव्य है, चाहे मुमुक्षु हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे पंचम गुण स्थान में हो, चाहे छठे सातवें गुण स्थान में हो। छठे सातवें गुण स्थान में आने वाले मुनिराज भी ऐसा सोचते हैं कि पंच महाव्रादि का परिणाम जो आया छठा गुण स्थान में वो प्रमाद है हमारा, वो शिथिलता है हमारे, इसलिए उसको प्रमद गुण स्थान नाम दिया है। छठे गुण स्थान को भगवान ने प्रमद गुण स्थान क्यों बताया? वो तो निष्परिग्रही है, उसको प्रमाद क्यों बताया? क्यों कि विकल्प आया क्यों? जब हमने दीक्षा केवल ज्ञान के लिए लिया है, हमने दीक्षा पंच महाव्रत पालन करने के लिए नहीं लिया, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए दीक्षा लिया है हमने तो, और वहां प्रतिज्ञा लिया है कि निरंतर हम शुद्धोपयोग में रहेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। फिर भी ये छठा गुण स्थान पंच महाव्रत का विकल्प वाला क्यों आता है? क्यों शीघ्र केवल ज्ञान नहीं होता है? और भगवान भी ऐसे उपदेश देंगे कि हे मुनि, अगर तेरा आयुष ये छठे सातवें में झूलते झूलते खत्म होगा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, देवलोक में जाना पड़ेगा और सागरोपम का आयुष चतुर्थ गुण स्थान में बिताना पड़ेगा, अविरुद्ध समय दृष्टि में, अविरुद्ध दशा में, सर्ववृत्ति दशा छूट जाएगी, अविरुद्ध दशा में सागरोपम रहना पड़ेगा। ये बलबलता अंगार, जलजलता अंगारा है, पंचास्तिकाएं में क्या लिखा, दीर्घ काल पर्यंत बलबलते अंगारे में शिकाना पड़ेगा, ये हालत हो जाएगी। उन्हीं को ऐसे उपदेश देते हैं, मुमुक्षु को तो समझ लेना चाहिए। भगवान की दिव्य ध्वनि में यदि मुनियों के लिए उपदेश आता है तो इस प्रकार का आता है कि हे मुनि, तुमने केवल ज्ञान के लिए दीक्षा तो लिया, फिर भी केवल ज्ञान नहीं लेकर के छठे सातवें में जीवन चला जाता है। अगर आयु पूरा हो गया ये छठे सातवें गुणस्थान में तो तुमको देवलोक में अनिवार्य रूप से जाना पड़ेगा, पर वहां तो चौथा गुणस्थान है, पांचवा भी नहीं है, और सागरोपम का आयुष होगा वहां तो बहुत। जो छठे सातवें गुणस्थान में आत्म शांति है, उस डिग्री की आत्म शांति चतुर्थ गुणस्थान में नहीं होती, उसके आगे वो अशांति है, तो वहां तुमको जा रहना पड़ेगा। इसलिए तरह से पुरुषार्थ करके केवल ज्ञान को साध ले तुम, ऐसा उपदेश आता है। जब मुनियों को भी ऐसा उपदेश भगवान का मिलता है तो मुमुक्षु को तो समझ लेना चाहिए कि शिथिलता में अगर आयु जाता है, काल व्यतीत होता है, वो तुमको कैसे पुसाता है। ज्ञानी को पुसाता नहीं, मुनि को पुसाता नहीं, वो तुमको कैसे पुसाता है, ये बात है। ऐसा यहां से उपदेश मिलता है। मुमुक्षु ने उस पर से ले लेना चाहिए कि जब मुनिराज को भी ऐसा उपदेश मिलता है तो मुमुक्षु दशा में हम जीवन व्यतीत करते हैं और ऊपर के मोक्ष मार्ग में गुणस्थान में आते नहीं हैं, तो अवश्य परिणाम पीछे पड़ गिर जाएगा, परिणाम गिर जाएगा और नुकसान हो जाएगा। यानी मिथ्यात्व अवस्था में जिसका मनुष्य आयु पूरा होता है, प्राय उसको मनुष्य आयु नहीं मिलता, और मनुष्य आयु को बहुत लंबे काल तक नहीं मिलता, और जो मोक्ष मार्ग का अवसर है, मौका है, वो तो मनुष्य देह के अलावा और तीन गति में है ही नहीं, नहीं वत है इसके बराबरी में, ये परिस्थिति है। इसलिए मनुष्य आयु का मूल्यांकन करके अपना आत्म कल्याण में पूरी शक्ति लगा देना, जितनी ताकत है उतनी ताकत से आत्म कल्याण में लग जाना, यही उपदेश है इसका। बार तो नहीं आवे, बीजी आठ आवे, बार थी जाए, थी जाए, बार गई से, चार गई से, मन चार माथी बार थी जाए पाछी। हाँ, इसलिए भगवान उपदेश देते हैं उनको, तो देखो मुनिराज, हमारे मार्ग में ऐसा नहीं चलता, हमारे मार्ग में शिथिलता को प्रोत्साहन हम देते हैं नहीं है, वो बात साफ है, और वही कह रहे हैं कृपालु देव अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन हमें तो उसमें से कोई सबक सीखना है क्या, नहीं सीखना है, ऐसी बात है। कौन? हाँ हाँ, तो हमको कितना साल हो गया, वो छह महीना तो अधिक से अधिक है, बहुत शिथिल पुरुषार्थ वाले की बात है। शिथिल पुरुषार्थ वाले को तो दो तीन महीना ही लगता है, किसको, शिथिल को दो तीन महीना लगता है, बहुत शिथिल को छह लगता है, बाकी शिथिल वाले को दो तीन महीना लगता है, बाकी पुरुषार्थ वाले को तो दो तीन महीना भी लगता
नहीं है,
ऐसी बात है। कंडीशन तो पहले पालन करना पड़ेगा, जब तो गारंटी काम में आएगी ना। यदि कोई आत्मार्थी अधिक परिणाम के कारण थोड़ी देर के लिए दिन में सो जाता है, यदि कोई आत्मार्थी अधिक परिणाम परिश्रम, परिश्रम शब्द है। अच्छा, यदि कोई आत्मा से अधिक परिश्रम के कारण थोड़ी देर के लिए दिन में सो जाता है तो यह दोष में आएगा, वो तो इंडिविजुअल बात होती है, उसमें सिद्धांत काम नहीं करता। कौन सा परिश्रम, कितना परिश्रम, आत्मार्थी की भूमिका कितनी, किस योग्यता का आत्मार्थी, बहुत सी बातें उसमें, बहुत से फैक्टर गिनने पड़ते हैं, ऐसे सिद्धांतिक तौर से वो बात नहीं हो सकती है। उसमें व्यक्तिगत केस में खास दृष्टिकोण से विचार करके जजमेंट लेना पड़ता है, ऐसे जजमेंट नहीं लिया जाता। क्योंकि ऐसा ही कर्तव्य है। आगे लिखते हैं कि जो राग द्वेषादि परिणाम अज्ञान के बिना संभवित नहीं है, उन राग द्वेषादि परिणाम को होते हुए भी सर्वथा जीवन मुक्तता मानकर जीवन मुक्त दशा की जीव असाधना करता है, ऐसी प्रवृत्ति करता है, क्या कहते हैं, ना स्वच्छंद होता है या निश्चयाभास होता है, वहां इसके लिए वो बात लिखा है कि जिस क्वालिटी के राग द्वेष के परिणाम अज्ञान के बिना संभवित नहीं है, तीव्र रस वाले परिणाम हो, जो अज्ञान के बिना होता ही नहीं, तीव्र रस वाले राग द्वेष अज्ञान के बिना होता ही नहीं, उन राग द्वेष परिणाम को होते हुए, करते हुए अपने लिए मान ले कि हम तो मुक्त है, ऐसे राग द्वेष से हम तो मुक्त है, हम तो नहीं करते, हम उसका करता हरता नहीं है, हम तो ज्ञाता है, हम तो लायक में रहते हैं, ऐसा मानकर जीवन मुक्त दशा के माने ज्ञान दशा के जीव असाधना करता है। वो जीव क्या करता है, ज्ञान दशा के असाधना करता है और ऐसी प्रवृत्ति करता है, वो बिल्कुल उचित नहीं है। प्रमाणिकता से अपना दोष का स्वीकार कर लेना चाहिए, बचाव नहीं करना चाहिए, दोष का बचाव किसी भी बहाने करना नहीं चाहिए, किसी भी बहाने क्या, अभिप्राय के बहाने भी नहीं करना चाहिए। मतलब कभी कोई ऐसे ले लेते हैं कि दोष तो हमारा हो गया लेकिन हमारा अभिप्राय नहीं था, अभिप्राय नहीं था और दोष हो गया तो तुमको खेल आया कि नहीं आया, या बचाव करने का भाव आया कि हमारा अभिप्राय नहीं था, वो बात अभिप्राय वाली बात सही नहीं है। निश्चयाभासी ग्रहित मिथ्या दृष्टि होवे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ग्रहित मिथ्या दृष्टि तो क्या है कि बुद्धिपूर्वक भूल करता है, तो अगर अनजाने में यह होता है, बुद्धिपूर्वक हो जाता है, तो उसको ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं कहते। क्यों कि ऐसा हो जाता है, व्यवहाराभासी भी हो जाता है अग्रहित में, निश्चयाभासी भी होता है और उभयाभासी भी होता है, पर उसमें बुद्धिपूर्वक ही भूल करता है तो ग्रहित लग जाता है। जहां अत्यंत ज्ञान हो वहां अत्यंत त्याग का संभव है। क्या कहते हैं कि जहां अत्यंत ज्ञान ज्ञान हो यानी परिपूर्ण ज्ञान हो वहां त्याग भी परिपूर्ण ही होता है, अत्यंत मैंने परिपूर्ण होता है। वो बात क्यों लिखी कृपालु देव ने, कई लोग कहते हैं कि कृपालु देव श्वेतांबर रामनाय में मानते थे या दिगंबर रामनाय में मानते थे, वो बात स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन यहां से स्पष्ट होती है। क्यों कि दिगंबर रामनाय में केवल ज्ञानी को संपूर्ण त्यागी माना है, क्या संपूर्ण त्यागी माना है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में अरियंत परमात्मा को गहने वगैरह लगाते हैं तो संपूर्ण त्याग कहां रहा, वहां तो मुनि दशा योग्यता त्याग भी नहीं रहा, अरे पंचम गुण स्थान वाला त्याग भी वहां नहीं है, सुक्ष्मलोकीलक का त्याग भी नहीं रहा वहां तो। अगर अलंकार कोई पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, तो उसमें तो सुलक इलक वाली भी दशा नहीं रही, मुनि दशा का तो सवाल होता ही नहीं है। तो देखो क्या सिद्धांत रहा कि जहाँ अत्यंत ज्ञान हो यानी केवल ज्ञान आप मानते हो किसी को, तो वहाँ अत्यंत त्याग संभव है, पूरा त्याग वहाँ होना चाहिए। तिलतुष मात्र परिग्रह जो मुनि को नहीं होता, तो तेरहवें स्थान में आरूढ़ होने वाला तो मुनियों के इंद्र मुनिंद्र है। इंद्र मैंने श्रेष्ठ, इंद्र मैंने श्रेष्ठ, जैसे देव में इंद्र है तो उसको देवेंद्र कहते हैं, मनुष्य में श्रेष्ठ हो तो उसको नरेंद्र कहते हैं, नर मैंने मनुष्य, ऐसे मुनियों में श्रेष्ठ होता है उसको मुनिंद्र कहते हैं। इंद्र शब्द श्रेष्ठावाचक है। तो जो मुनि है वो तिलतुष मात्र परिग्रह नहीं ग्रहण करेंगे, और मुनिंद्र है वो ग्रहण करने लग जाए, उल्टी उल्टी गाड़ी चलती है क्या? ऐसी बात बात नहीं चलती है कभी। इसलिए कहते हैं कि जहां अत्यंत मैंने परिपूर्ण ज्ञान हो वहां परिपूर्ण त्याग का संभव है, ये सिद्धांतिक बात है। और अत्यंत त्याग प्रकट हुए बिना मैंने गृहस्थ दशा में अत्यंत ज्ञान नहीं होता, उनको केवल ज्ञान कभी प्रकट हो सकता
नहीं है,
नहीं है। कभी कोई लोग मानते थे कृपाणु देव को केवल ज्ञान हो गया है, वो संजलन कषाय वाली बात आई ना, गृहस्थ दशा में केवल ज्ञान हो सकता नहीं, वो कृपाणु देव के वचन है कि अत्यंतता त्याग प्रकट किए बिना निग्रंथ अंतर वाले हुए बिना किसी को अत्यंत ज्ञान में परिपूर्ण केवल ज्ञान हो सकता
नहीं है।
इसलिए जो पीताम्बर आगम में वो सिद्धांत है कि कभी कभी गृहस्थ में भी केवल ज्ञान हो जाता है या सवस्त्र दशा में केवल ज्ञान हो जाता है, वो बात कभी बन सकती
नहीं
है। ऐसा श्री तीर्थंकर ने स्वीकार किया है, ये बात हमारे घर की नहीं है, तीर्थंकरों ने वो बात का स्वीकार किया है, ये तीर्थंकर का मार्ग है, तो उसमें कोई भी विकृति चल सकती नहीं है, कोई विकृति का स्वीकार नहीं है, वहां यहां से निकलता है। वो क्या मानते थे वो बात यहां से स्पष्ट निकलता है, एकदम स्पष्ट निकलता है। और उनका जीवन में से वो बात निकलती है दूसरी जगह से, कि वो जो जवेरी बाजार की गद्दी पे बैठते थे और हमेशा दर्शन करने के लिए दूसरे भोईवाड़े के दिगंबर मंदिर में जाते थे, बीच में ये तांबा काठा वाला श्वेतांबर का घोड़ी जी का बड़ा मंदिर है, श्वेतांबर का वो रास्ते में आता है पहला, उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है, गुलालवाड़ी गुलालवाड़ी में से पहला भोईवाड़ा, पहला भोईवाड़ा से क्रॉस करके दूसरा भोईवाड़ा में जाना पड़ता है, वहां जाते थे। और बीच वाला मंदिर को क्या छोड़ते थे, क्यों नहीं जाते थे वहां, वो बताता है कि अपने जीवन में वो क्या चीज को स्वीकारते थे और क्या चीज को नहीं स्वीकारते थे, वो बात स्पष्ट निकलती है, बहुत जगह से निकलता है। और भी निकलता है कि जो मुनि दशा है वो यथा जात लिंग रूप होती है, वो बात भी उन्होंने कही है, हमने तो हमारे ग्रंथ में तो नोट किया है कि वो कहाँ लिखे, इसमें तो नहीं मिलेगा, इसमें है ओके, इसमें नहीं होगा, यथा जात रूप मुनि लिंग वो आता है करीब 30-31 के 32 के वर्ष में आता है। करपात्र वाली बात तो बहुत शुरुआत में आती है, वो तो 24 के वर्ष में आते हैं, करपात्र में भिक्षामण लेने वाले के लिए बहुमान किया है, तो करपात्र में तो दिगंबर आमना में ही वो करपात्र है, और जगह भिक्षा का करपात्र है नहीं। और यथाजात रूप मैंने जैसे जन्म हुआ नग्न दशा में ऐसा मुनिलिंग होता है वो बात।
अच्छा
तो वो बात कौन कहते हैं पहले तो वो बात है।
तो
उसके उनकी कुछ खुद की तो उपस्थिति नहीं थी तो मतलब क्या होती है कि जब पक्ष बुद्धि से कोई ना कोई बात बनती है जहां तक उसका आधार नहीं मिले वो ऑथेंटिक नहीं माननी चाहिए। जबकि वो बात ग्रंथ में मिलती है, कृपालु देव के ग्रंथ में कोई बात मिलती हो तो दिखा दो। हाँ तो ग्रंथ में यथाजात रूप मुनि नहीं जाता है, यह सिद्धांत आया कि अत्यंत त्याग हुए बिना अत्यंत ज्ञान प्रकट नहीं होता। अत्यंत ज्ञान होता ही नहीं, मैंने केवल ज्ञान होता ही नहीं। अत्यंत त्याग मानो नहीं और केवल ज्ञान मानो और बात बन सकती नहीं है। तो बात तो स्पष्ट हो गई, दोनों साइड से लिया कि अत्यंत ज्ञान हो जाए अत्यंत त्याग होगा ही होगा, अत्यंत त्याग हुए बिना परिपूर्ण ज्ञान हो सकता नहीं है। अपूर्व अवसर में तो लिया वो तो बहुत स्पष्ट है, उसमें तो 28 मुकुमन बहुत स्पष्ट है। ये सिद्धांत की बात है, संप्रदाय की बात नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप की बात है। ये छठे सातवें या तेरहवें गुणस्थान में राग की वितरागता की मर्यादा कितनी होती है उतनी सी बात है, वो तो मर्यादा समझना चाहिए। हाँ हाँ वो तो अंदर में जम जाने की बात है, लेकिन भाई अंदर तो जम गया लेकिन बाहर ऐसा रह गया तो क्या हम अंदर जम जाने में बाहर का संयोग आड़े आता है, वो दलील आती है। तो क्या नहीं ऐसा नहीं है, अत्यंत त्याग हो बिना परिपूर्ण ज्ञान हो सकता नहीं है, ऐसी बात है। अब कहते हैं के मूल में त्याग की परिस्थिति क्या है, कहां से त्याग शुरू होता है, मूल में मोक्ष मार्ग का जो मूल है उसमें त्याग की परिस्थिति कैसे होती है। आत्म परिणाम से जितना अन्य पदार्थ का तादात्म अध्यास निवृत्त होना उसे श्री जिनेन्द्र त्याग कहते हैं। अध्यास के त्याग को त्याग कहा शुरू में, अध्यास का त्याग तो किया नहीं और बाहर में त्याग कर दिया तो त्याग है कि नहीं है?
नहीं है
तो त्याग बिल्कुल नहीं है। कोई भी पदार्थ का त्याग करो, पंचेंद्रिय के विषय में किसी भी पदार्थ का त्याग करो, आहार का त्याग करो या कोई भी त्याग करो, इस पदार्थ के अध्यास का त्याग किया कि नहीं किया? अध्यास माने क्या समझते? अध्यास मैंने मैं उसको ग्रहण कर सकता हूं वो अध्यास है, और मैं उसको त्याग कर सकता हूं वो भी अध्यास है। अध्यास मैंने एकत्व रूप परिणमन, कर्ता भोक्ता रूप परिणमन, एकत्व बुद्धि का परिणमन, सुख बुद्धि का परिणमन, आधार बुद्धि का परिणमन, ये सब परिणमन अध्यास का है। तो अध्यास का त्याग पहला होना चाहिए, फिर जो त्याग है वो त्याग रूप बोला जाता है। अगर अध्यास का त्याग नहीं हुआ तो बाह्य पदार्थ का त्याग वो सच्चा त्याग
नहीं है।
अच्छा तो अध्यास का त्याग कब होता है? कि आत्मस्वरूप का ग्रहण होता है तो अध्यास का त्याग होता है। आत्मा में आत्मबुद्धि होती है तो देहात्म बुद्धि जाती है, अगर ना देहात्म बुद्धि तो टलती नहीं। देहात्म बुद्धि गई बिना पर पदार्थ का त्याग त्याग कैसा? तो वो कोई त्याग है ही
नहीं,
नहीं।
कसाई
रस। क्या? हाँ वो तो बात, कसाय रस जो तीव्र होता है मुमुक्षु को उसमें अध्यास हो जाता है, पर कषाय रस मंद होता है तो अध्यास मंद भी रहता है। यहाँ अध्यास मैंने एकत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, आधार बुद्धि, सुख बुद्धि, ये जो प्रकार है वो अध्यास को सूचित करती है। तो पहले अध्यास छूटे तो त्याग सच्चा, अध्यास छूटे बिना त्याग सच्चा है ही नहीं। अध्यात्म अथर्ववेद एक आधार लेकर के भ्रम हो गया, आधार लेकर के भ्रम हो गया, उसको अध्यास कहते हैं। जैसे रस्सी में सर्प दिखना तो अध्यास है, सर्प का अध्यास हो गया, मैंने भ्रम हो गया कि यहाँ सर्प पड़ा है, वास्तव में वहां रस्सी पड़ी है, सर्प नहीं है, तो ऐसा भ्रम को कहते हैं अध्यास। इसमें देह में आत्मा है माना, देह में आत्म बुद्धि हुआ वो अध्यास है, कर्ता बुद्धि हुआ पर पदार्थ के और राग में अध्यास हुआ, भोक्ता बुद्धि हुआ अध्यास हुआ, एकत्व बुद्धि हुआ अध्यास हुआ, उसको भ्रम कहते हैं। हाँ वो अध्यासित है, द्रविलिंगी है उसको अध्यास छूटा, अध्यास छूटा नहीं है, तो उसका त्याग को भगवान त्याग कहते हैं
नहीं है।
ने
कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया,
कुछ त्यागा ही नहीं है ऐसा कहते थे, त्याग किया ही नहीं ऐसा कहते, हाँ कुछ नहीं किया है। और भी थोड़ा उस विषय पर विशेष लेंगे।